بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. حق کو باطل کے ساتھ مخلوط مت کرو کہ حق کو چھپانے لگو حالانکہ تم جانتے ہو. وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. پہلے کتاب یہود کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر خطاب فرمایا، اس سے پہلی آیتوں میں بھی دو بنیادی باتوں کی طرف ان کو توجہ دلائی کہ احسان کو یاد کرو، عہد کو پورا کرو اور ایمان لے آؤ، اور میری آیتوں کو دنیا کے حقیر قیمتوں کے عوض فروخت مت کرو. ایک اور حکم اس آیت کے اندر ولا تلبس الحق کے اندر دیا گیا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ میں مخلوط مت کرو، مکس کر کے مت پیش کرو، کہ جس کی وجہ سے تم حق کو چھپانے لگو حالانکہ تم کو پتہ ہو کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، اور تمہارے اس کہنے سے سامنے والا سننے والا یہ سمجھے گا کہ باطل حق ہے یا حق بھی باطل ہے. غلط مسائل بتانا یہ جانتے ہوئے کہ یہ مسئلہ غلط ہے، یا لچکدار مسئلہ بتانا یہ جانتے ہوئے کہ اس کے اندر میں نے بے وجہ لچک پیدا کی ہے، کوئی شرعی عذر موجود نہیں ہے، کوئی مصلحت خاص اس کی موجود نہیں ہے، صرف دنیاوی فائدے کے خاطر کوئی عالم اگر کسی کے لیے مسئلے کے اندر لچک پیدا کر دے، یہ غلط مسئلہ بتا دے، تو یہ حق کو باطل کے ساتھ مکس کرنے میں آتا ہے، اور یہ ازروع قرآن حرام ہے، اس سے بچنے کا صاف حکم ہے. علماء کی خاصیت بتائی جا رہی ہے اس کے اندر گویا کہ حق و باطل تم کو پتہ ہوتا ہے، اس کے بیان کرنے میں بھی پھر تم کو صاف الفاظ اور تعبیر اختیار کرنا ہے. حق کو اسی طرح واضح انداز سے، باطل کو اسی طرح واضح انداز سے بیان کرنا، گول مول بات کر کے حق کو باطل کے ساتھ مکس نہیں کرنا، ایسے ہی گول مول بات کر کے باطل کو ناحق کو حق کے ساتھ میں مکس نہیں کرنا. دنیا بھر کے اندر اس قسم کے مظاہرے دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگ بے وجہ مسائل کے اندر، عقائد کے اندر لچک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسائل کے اندر، عقائد کے اندر لچک پیدا کرنے کے لیے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا یہ حکم نکلتا ہے، اس آیت سے یہ حکم نکلتا ہے. آج کل کے زمانے میں یہ چیز بہت عام ہے کہ ہر طرح کی ذہنیت کے لوگ ہر جگہ جمع ہو جاتے ہیں، دینی ادارہ موجود ہو تو اس سے بھی ایسے لوگ جڑ جاتے ہیں، مسجد موجود ہو تو اس کی کمیٹی میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. اب اس کے اندر کوئی ڈیسیشن لینا، کوئی فیصلہ کرنا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ دوسری چیز اس کے جو اپوزٹ ہے وہ ناحق ہے، کوئی ایک ڈیسیشن لینا اور حق کو حق کے انداز سے کلیئرلی بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یا اس پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لوگ پھر ایسی صورت تلاش کرتے ہیں جس کے اندر حق کی کچھ کچھ رعایت ہو جائے، ناحق کی بھی کچھ کچھ رعایت ہو جائے.
ऐसे मिसाल के तौर पर दीन का काम करना है, दीन के काम के अंदर लोगों को मदऊ करना है, बुलाना है, औरतों को भी बुलाना है, मर्दों को भी बुलाना है, दावत सबको देना है, दीन सबको बताना है, दीन सबको समझाना सुनाना है। लेकिन इसके लिए सबको साथ बिठाना, मिक्स गैदरिंग कराना, ये तो जायज़ नहीं है ना। तो अगर कोई दीन सुनाने के वास्ते मिक्स गैदरिंग करता है तो ये हक को बातिल के साथ में मिक्स करना नहीं है तो और क्या है। अगर कोई गैर ज़रूरी मौका नहीं है, गैर ज़रूरी तौर पे फ़ोटो खिंचवा रहा है दीनी महफिलों के अंदर, या वैसे ही ख़ास तौर पे अगर दीनी महफिलों के अंदर हो कि इसके ज़रिए से दीनी कामों की इशाअत होगी, दीनी कामों का फैलाव होगा, तो जाहिर सी बात है जो काम दीनी किया है वो तो हक है, लेकिन उसके साथ में जो बेवजह बिला ज़रूरत ये जो फ़ोटो खिंचवाने का अमल है, ये अमल हक को बातिल के साथ में मिक्स करना नहीं है तो और क्या है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे माशरे के अंदर और हमारी मसाजिद के अंदर, मराकज़ के अंदर, दीनी इदारों के अंदर ऐसी पाई जाती हैं, इस्लामिक सेंटरों के अंदर पाई जाती हैं कि हक को हक रहने नहीं दिया जाता, बातिल को बातिल नुमाया नहीं किया जाता, बल्कि हक के साथ में बातिल को मिक्स करके पेश करते हैं। आजकल यही होता है दुनिया भर में, ये चीज़ ये वबा आम होते जा रही है। उलमा को, हर मुसलमान को चाहिए कि जो हक है वो उस पर डट जाए, अकीदे के एतबार से भी, अमल के एतबार से भी, और बिलखुसूस उलमा को चाहिए, उलमा का काम है कि वो हक को उनके हकीकी सूरत में वाज़े कर दें कि ये हक है, अब चाहो तुम अमल करो चाहो नहीं करो, लेकिन है तो हक यही, ऐसे ही ये बातिल है, अब इसको छोड़ना है, चाहो तुम छोड़ो चाहो नहीं छोड़ो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन चूंकि तुम्हारा दिल चाह रहा है कि ये ऐसा होना चाहिए वो वैसा होना चाहिए, इसलिए मैं हक को बातिल से मिक्स करके तुम्हारे सामने पेश करूँ, ये उलमा का काम नहीं। मुफस्सिरीन किराम ने बेशुमार वाक़ात उलमा के लिखे हैं इस किस्म की आयतों के ज़मन में। एक वाक़ा हज़रत अबू हाजिम ताबिई रहमतुल्लाहि अलैह का लिखा हुआ है कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो बनो उमैया का खलीफा था और अपने बाज़ खसूसियतों के लिए बहुत मशहूर था, खुश खुराक बहुत था, खूबसूरत बहुत था, खुश पोशाक बहुत था, बहुत वजीह चेहरे वाला था, अपने दौर में बाज़ अच्छे काम भी किए और बाज़ ऐसे काम भी किए जो नहीं करने चाहिए, लेकिन एक ताकतवर आदमी ताकत के ज़ोर में कर डालता है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह को खलीफा इसी ने बनवाया, यानी इसके बाद ही तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह खलीफा बनी थी, तो वली अहद इसने मुतय्यन किया था, तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ को ये बहुत बड़ा इसका काम समझा जाता है, हालांकि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ से पहले कोई और था वली अहद। अलगरज तो ये मदीना तय्यबा एक मरतबा आया, असल इनका दारुल खिलाफत था शाम में, वहाँ से ये मदीने आए, क्योंकि अभी दीनी आसार बाकी थे, दीन पसंदी मौजूद थी, दीन पसंदी का इजहार बादशाहों तक में, दरबारों तक में हुआ करता था और उलमा के मजमे तक लगते थे, तो फिर बादशाहों को भी उलमा से एक किस्म का उन्स थी, मोहब्बत था थी, तो उसने कहा कि यहाँ मदीने के जो उलमा हैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जब आम निदा के मुनादी कर दी गई कि भाई बादशाह सलामत मुलाकात करना चाहते हैं, तो उलमा आके मिलने लगे। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने पूछा कि यहाँ पर कोई ऐसा आलिम भी है जिसने सहाबा में से किसी की ज़ियारत और मुलाकात की हो, उनकी सोहबत उठाई हो, तो दूसरे उलमा ने बताया कि हाँ अबू हाजिम रहमतुल्लाहि अलैह उन्होंने हजरत सहाबा की सोहबत उठाई है, कहा कि उनको बुलाओ, तो बुलाया गया, वो आए तो उनसे पूछने लगा कि अबू हाजिम ऐसी कैसी बेवफाई है, कैसी बेमुरूवती है कि सब उलमा आके मुझसे मिल रहे हैं, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ और तुम आते नहीं मिलते नहीं, तो बादशाह सलामत है और एक तरफ आलिम एक दर आलिम दीन है और उसका माशाल्लाह काफ़ी जाहो जलाल वाला, जाहिर सी बात है उस वक़्त इस्लाम काफ़ी दूर तक फैल चुका था, काफ़ी मुल्कों तक वसी हो गया था, तो अब उतनी सारी हदूद पे, उतने सारे रकबे पे, उतने सारे सल्तनतों पे, मुल्कों पे हुकूमत और सल्तनत करने वाला एक बादशाह सामने है, उसकी तरफ से ये बात हो रही है अबू हाजिम को, हज़रत अबू हाजिम को, تو وہ فرمانے لگے کہ بادشاہ سلامت اللہ کی میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے اور آپ کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ آپ کے منہ سے ایسی بات نکلے جو خلاف واقعہ ہو. میں پوچھا کہ کیا مطلب؟ کہنے لگے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بے وفائی اور بے مورتی کر میں نے کی ہے کہ آپ سے آ کے ملا نہیں، حالانکہ آج سے پہلے آپ مجھے جانتے نہیں تھے اور آج سے پہلے میں آپ سے کبھی ملا نہیں تھا. ملنے والے نہیں ملے تو بے وفائی ہوتی، ملنے والے نہیں ملے تو بے مروتی ہوتی. ہماری پہلی ملاقات ہے تو بے وفائی بے مروتی کا کیا ذکر؟ تو سلمان بن عبد الملک کے سیانہ ہو کر وہ دوسرے علماء کو دیکھنے لگا. تو اس وقت چونکہ حق پرستی موجود تھی تو دوسروں نے بھی کہا کہ وہ حازم کی بات صحیح ہے. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے اپنا انداز بدل کر ان سے مختلف سوالات کیے. ہم سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا کہ ہم موت سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو حازم نے فرمایا کہ ہم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو ویران کیا ہے، اب آبادی سے ویرانے میں جانے کے لیے ڈر لگتا ہے. انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے سامنے ہماری پیشی کیسی ہوگی؟ تو فرمایا کہ جو فرما بردار بندہ ہوگا اس کی اللہ کے سامنے پیشی اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی مسافر سفر سے اپنے گھر واپس ہو رہا ہو، اور جو نافرمان بندہ ہے اس کی پیشی اللہ کے سامنے ایسی ہوگی جیسے کوئی بھگوڑا غلام اپنے آقا کے سامنے پکڑ کے پیش کیا جائے. اس نے اور مختلف قسم کے سوالات کیے، اپنے بارے میں پوچھا کہ آپ کی میرے بارے میں کیا رائے ہے. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے اس سے معذور رکھیں، اس کا جواب دینے سے ہی تو بہتر ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو کوئی کلمہ خیر کہنا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے حقیقت تو یہ ہے اور اللہ جانتا ہے کہ آپ کے بڑوں نے، یعنی سلیمان بن عبد الملک سے پہلے تھا ولید بن عبد الملک، پھر مروان بن عبد الملک، پھر مروان تھا، مروان سے پہلے حکم تھا، اس سے پہلے یزید تھا وغیرہ، تو ان لوگوں نے، آپ کے بڑوں نے زبردستی لوگوں پر حکومت قائم کی ہے، لوگوں سے قتل و قتال کیا ہے اور جابرانہ طریقے سے ان کے اوپر حکومت کا تسلط کیا ہے، اور اس کے بعد پھر حکومت پر آنے کے بعد بھی انہوں نے مسلمانوں سے قتال کیا ہے، تو ان کے یہ سب برے اعمال ہیں، اور پھر وہ اسی حالت میں یعنی اس سے توبہ کیے بغیر ہی وہ وفات پا چکے ہیں، سب کا انتقال ہو گیا، اور آپ کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میں کیا سلوک وہاں پر ہو رہا ہے، اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اب دنیا والے ان کو کیا کہتے ہیں جب وہ انتقال کر چکے ہیں. جب انہوں نے صاحب گوئی سے بتا دیا، نہ صرف سلیمان بن عبد الملک کو بلکہ اس کے بڑوں تک کو سنا دیا، تو ایک حاشیہ نشی نے بادشاہ کی طرف داری کرتے ہوئے اٹھ کر ان سے کہنے لگا کہ ابو حازم تم نے غلط بات کہہ دی. وہ کہنے لگے غلط بات نہیں کہی، وہ بات کہی جس کے کہنے کا حکم ہے. پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ علماء کی جو ذمہ داری قرآن میں بتائی گئی ہے وہ ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ لوگوں کو تم وضاحت کے ساتھ میں بتا دو گے اور تم جو جانتے ہو حق کو اس کو چھپاؤ گے نہیں. یہ کام ہے علماء، یہ اس واقعے کو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. پھر اس کے بعد اور اس ان سے سوالات کیے اور کہنے لگا کہ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں. تو حضرت ابو حازم نے فرمایا کہ ہاں ضرورت تو ہے، ایسا کرو مجھے جہنم سے نجات دلا دو اور جنت میں داخلہ دلا دو. کہنے لگے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. تو فرمایا کہ پھر میری تمہارے سے کوئی حاجت بھی وابستہ نہیں ہے. اس میں ایک سوال اس نے یہ بھی کیا تھا سلیمان بن عبد الملک نے کہ کون سی بات سب سے بہتر ہے، سچی ہے، تو بولے یا بہتر افضل کلام کون سا ہے؟ تو ابو حازم نے فرمایا کہ جس سے تم کو کوئی خوف ہے یا جس سے تم کو کوئی لالچ ہے، امید ہے، اس کے سامنے سچ بات کہہ دینا. جس سے تم کو کوئی خوف ہے یا جس سے تم کو کچھ امید ہے، اس کے سامنے سچ بات کہہ دینا. اگر خوف کی وجہ سے تم مورد خوف بنتے ہو، اس کا غصہ تم پر اترتا ہے حق بات کہہ دینے کے باوجود، تو وہ سہ لینا، لیکن حق بات کو نہیں چھوڑنا. امید وابستہ ہے، حق بات کہہ دینے کی وجہ سے جس چیز کے ملنے کی امید تھی وہ چھوٹنے والی ہو، تو اس کے چھوٹنے کا غم زیادہ نہیں ہونا چاہیے، حق کے چھپانے کا غم زیادہ ہونا چاہیے. یہ سب ملاقات کے بعد میں پھر سلیمان بن عبد الملک نے ان کو 100 دینار ہدیہ بھیجے. تو انہوں نے اس کو واپس کیا، ساتھ میں خط بھی لکھ دیا کہ اگر تم نے یہ جو دینار مجھے دیے ہیں یہ میرے کلمات کے معاوضے میں دیے ہیں تو میرے نزدیک خون اور خنزیر کا گوشت اس سے بہتر ہے، اور اگر تم نے یہ اس واسطے دیے ہیں ये बैतुल माल के हैं और बैतुल माल में सारे मुसलमानों का हक बनता है, तो मेरा भी हक बनता है, इस वास्ते दिए हैं। तो मेरा पहले सवाल ये है कि मुझ जैसे और हज़ारों उलमा मौजूद हैं, उनके साथ सबके साथ तुमने ये किया है या सिर्फ मेरे साथ किया है? सबके साथ नहीं किया है तो फिर जाहिर सी बात है सबके साथ इंसाफ के साथ इंसाफ करने के वास्ते ही तुम बादशाह बने। ये लिख करके उनको ख़त भेज दिया, फिर वो पैसे भी वापस कर दिए, वो दीनार भी वापस कर दिया। तो हक गोई उलमा का शियार होनी चाहिए। अगर हक गोई उलमा के अंदर से ही चली जाए या हक व बातिल वजाहत के साथ बयान करना उनकी आदत होनी चाहिए, यह आदत खुद उनके अंदर से चली जाए और दुनियावी मफाद की खातिर, तो फिर इस्लाम का कोई ठिकाना नहीं रह जाता, फिर दीन का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। कहते हैं ना कि वो उलमा की मिसाल नमक जैसी है, खाना ख़राब हो जाए तो नमक से खाने को दुरुस्त कर लेते हैं, नमक खुद ख़राब हो जाए तो दूसरी और चीज़ों की तो इसलाह नहीं होती। जिस चीज़ को दुरुस्त होना चाहिए वो खुद ख़राब हो गया, मतलब सारा का सारा बेड़ा गर्क हो गया है, यानी हमारी बचाव की कोई सूरत नहीं है, सलाह की कोई सूरत नहीं है, इसलाह की कोई सूरत नहीं है। वला तलबिसुल हक बिल बातिल वतक्तुमुल हक वअंतुम तअलमून। हक को बातिल के साथ मिक्स मत करो हालांकि, और तुम हक को छुपाने लगो हालांकि तुम जानते भी हो कि हक क्या है और बातिल क्या है। उसके बाद हुक्म है कि नमाज को कायम करो, ज़कात अदा करो, रुकू करने वालों के साथ में रुकू करो। एक चीज़ गौर करें कि जहाँ कहीं कुरान करीम में हुक्म दिया जाता है वो नमाज को कायम करने का दिया जाता है, सिर्फ नमाज के पढ़ने का नहीं दिया जाता। तो इकामत सलात क्या चीज़ है, ये समझना भी है, ये सीखना भी है, इस पर अमल भी करना है। बारहा ये चीज़ सामने लाई जाती है कुरान करीम में, जब बीसियों दफ़ा इसका जिक्र आया इसके अहमियत के बिना पर, तो बारहा इसको सुनना भी है, सुनाना भी है, आगे बताना भी है, आगे वालों को याद दिलाना है। ना सिर्फ ये कि हम याद करना है, आगे वालों को भी याद दिलाना ये हमारी जिम्मेदारी है कि इकामत सलात कहते किसको है। नमाज पढ़ना, वक्त पे पढ़ना और पूरे आदाब के साथ, शराइत के साथ, मुस्तहबात के साथ, वाजिबात और अरकान की अदायगी के साथ पढ़ना, तमाम उसके हुकूक को अदा करना। हत्ता के अगर आप सिर्फ नमाज पढ़ लें, आपके मातहतों पे अगर आप उनकी निगरानी रख के नमाज का हुक्म नहीं करें, तब भी ये इकामत सलात के खिलाफ है। तो अब जाहिर सी बात है कुरान ये कह रहा है कि अकीमुस्सला, हर बंदा खुद भी नमाज पढ़े, वक़्त पे पढ़े, और उसके साथ साथ अगर मर्द है तो मस्जिद में हाजिर होकर जमात के साथ पढ़े, फिर उसके बाद नमाज ऐसे पढ़े जैसे उसके पढ़ने का हक है, यानी उससे पहले वुजू कामिल होना, नमाज खुशुखुजू वाली होना, पूरे अरकान के साथ, वाजिबात मुस्तहबात आदाब के साथ होना, फिर उसके बाद उन्हें घर जाना तो उसके घर में जो बीवी मौजूद है उसको भी नमाज पढ़वाना, और इन चीज़ों के अहतमाम के साथ, बच्चे छोटे मौजूद हैं जो नमाज सिखाने के काबिल हैं, सीखने की उम्र के हैं, तो उनको नमाज सिखाना, उनको नमाज का पाबंद करना, उनको ये सब चीज़ें सिखाना, ये सब इकामत सलात में आता है। एक मुस्तकिल काम है ये इकामत सलात। और नमाज पढ़ने वालों, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उम्मत का 95% जो तबका है वो तो नहीं पढ़ने वाला है, जो पढ़ने वाले हैं उनसे उनको भी अपनी नमाजों की इस्लाह की फिक्र करनी चाहिए। हम जो नमाज पढ़ते हैं इसका किस्सा यही नहीं है कि हमने पढ़ ली है बस हमारे सर से उतार दिया हमने फ़र्ज़ को, ऐसा किस्सा नहीं है। बुजुर्गान दीन आखिरी आखिरी उम्रों तक भी अपनी नमाज को दूसरों से चेक करवाते थे कि मेरा रुकू सही है नहीं है देखो, मेरा सजदा सही है नहीं है देखो, मैं कायदे में जैसा बैठ रहा हूँ वैसा सुन्नत के मुताबिक है नहीं है देखो, नमाज में पढ़ रहा हूँ तो मैं नमाज में हूँ जैसा दिख रहा नहीं दिख रहा, मेरे अंदर खुशू पैदा हुआ नहीं हुआ, खुशू मेरी नमाज में मौजूद है नहीं है। ये मुस्तकिल अमल है ये। आखिर कुरान इस्लाम के अंदर ये जो बताया गया है, आगे भी आगे आयत आ रही है, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, के सबर और सलात के ज़रिए से तुम मदद मांगा करो अल्लाह की। हर चीज़ के वास्ते नमाज से जोड़ा गया, हर चीज़ के वास्ते, अगर चप्पल टूट गई तो उसके वास्ते भी दुआ नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगना है, बड़े से बड़ा हादसा आ गया तो भी उसके वास्ते नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगना है। अल्लाह सल्लम की आदत यही बताई गई, इज़ा हज़बहु अमरुन फ़ज़ा इलस फ़ज़ा, हदीस शरीफ में आया है कि जब भी कोई परेशानी की बात होती नमाज की तरफ आप दौड़ के जाते थे। तो आखिर कुछ तो है वहाँ पर कि हमारे हर मसले का हल नमाज से जोड़ा गया, बताया गया, और न सिर्फ निचला तबका यानी हमारी दीन की निचली हालत नमाज से जुड़ी हुई है, बल्कि फरमाया गया अस्सलातु मेराजुल मोमिनिन, मेराज जिसको कहते हैं जो उरूज की इंतहा होती है उसको कहते हैं मेराज, बुलंदी की जो इंतहा होती है वो भी नमाज में ही है, यानी हमारी इब्तदा नमाज से और हमारी इंतहा नमाज पे, शुरू भी हम वहीं से होते हैं, ख़त्म भी हम उसी पे होते हैं। तो ये एक ऐसा मुस्तकिल अमल है, तो इसकी तरफ वैसी तवज्जो करनी चाहिए जैसी इसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। हम सुन्नत पढ़ें, नफिल पढ़ें, वाजिब पढ़ें या फर्ज पढ़ें, इसके पढ़ने में इन सब चीज़ों का एहतमाम ज़रूरी है। कामत सलात के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये नहीं आती हैं हमारी ज़िंदगी में, तो हम बस अपने सर से फ़र्ज़ को टाल रहे हैं, हम इकामत सलात का फरीज़ा अंजाम नहीं दे रहे जिसका हुक्म कुरान में है। तो गोया हम कुरानी हुक्म को पूरा नहीं कर रहे, जैसे सैकड़ों और हुक्म हम छोड़ते जा रहे हैं, इसको भी हम छोड़ रहे हैं। हर फिर हमें गलतफहमी ये है कि हम कुरान का हुक्म पूरा कर रहे हैं, कुरान का हुक्म छोड़ के गलतफहमी ये है कि हम कुरान का हुक्म पूरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। औरतों को घरों के अंदर इसका एहतमाम करना है। औरतों का खुशो खुशू भी काफ़ी मशहूर होता है, बच्चों वालों के लिए तो ज़रा दुश्वार होता है जिनके बच्चे छोटे हों, लेकिन जो इस मरहले से गुजर चुके होते हैं उन लोगों को कोशिश करके अपनी नमाज के अंदर एहतमाम से खुशो खुदू को पैदा करना है अल्लाह की तरफ। ये एक मुस्तकिल किस्म की तवज्जो है जो अल्लाह की तरफ, अल्लाह से लौ लगाने की एक अमल है। इसके अंदर होता क्या, आगे भी बात आएगी, मुख्तसरन ये इसके अंदर होता ये कि आदमी की तबीयत आज़ाद है, उसका दिल आज़ाद है, और बाकी अज़ा पूरे वो भी दिल के ताबे हैं, तो सबके सब आज़ादी पसंद है। नमाज के अंदर हर एतबार से बंध जाते हैं, इस वास्ते नमाज से तबीयत भागती है। खाना नहीं, पीना नहीं, चलना नहीं, अब नमाज में ये बोला गया कुछ और सोचना भी नहीं, तो दिल का जो अमल है उससे उसको रोक दिया गया, इस वास्ते भारी पड़ती हो। आगे आ रहा है वो तो अकीमुस्सला, तो ये जो नमाज की जान है, नमाज की जो रूह है, खुशू जिसको कहते हैं, वो नमाजों के अंदर पैदा करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर वो है तभी तो हमारी नमाजें जानदार हैं, और अगर वो नहीं है तो फिर बेरूह नमाजें हैं हमारी। वआतु ज़कात, दूसरा हुक्म इनको दिया गया कि ज़कात अदा किया करो। ज़कात शरीयत इस्लाम के अंदर माल का वो हिस्सा, मखसूस 40वां हिस्सा जो मखसूस मालियत रखने वाले निसाब के जो मालिक होते हैं उन लोगों पर साल में एक दफ़ा वाजिब किया जाता है, जिसके मखसूस अहकाम हैं। हर आदमी को ये जानने की ज़रूरत है, मालूम करने की ज़रूरत है कि हम पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं, ये मालूम होना चाहिए, करना चाहिए कि मेरे पास इतनी मालियत मौजूद है, और इतनी मालियत वाले पर क्या शरीयत में ज़कात वाजिब है या नहीं है। लोग अपने से डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। और जो ज़कात देते हैं, ज़कात देने वालों में जो एक बहुत बेएहतियाती होती है जो नहीं होनी चाहिए, वो है कि उनके पास जितनी चीज़ें हैं सबका वो हिसाब नहीं करते। ज़कात तो दे देते हैं, अंदाजे से दे देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, मर्दों के अंदर भी है ये, औरतों के अंदर भी है ये। औरतें अपने सोने का हिसाब नहीं करती, मर्द अपने पास जो बैंक बैलेंस है हर तरफ में, जो चार तरफ पैसा फैला हुआ है, उसका पूरा हिसाब करके नहीं देते। एक अंदाज़ा लगा लेते कि टोटल मेरे पास इतना होगा, इसकी ज़कात इतनी बनती है, बस उसकी ज़कात निकाल दी, ऐसा नहीं करना है। बज दफ़ा अगर बेएहतियाती के अंदर थोड़ा सा माल भी ऐसा रह जाता है जिसकी ज़कात अदा नहीं हुई है, तो उसकी नहुसत सारे माल को लिपटती है और ले डूबती है। जब हम अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे हैं तो हुक्म को हुक्म की हैसियत से पूरा करना चाहिए। वरकाउ मअर राकिईन, और फिर रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। रुकू नमाज का एक रुकन है और सिर्फ उसका एक जुज है। कहना यहाँ पे अल्लाह पाक चाहते हैं नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ो। रुकू से ताबीर इसलिए किया गया है क्योंकि नमाजें तो उम्मत मुहम्मदिया से पहले और उम्मतों को भी दी गई, लेकिन उसके अंदर रुकू नहीं था। यहूदियों के लिए भी नमाज मुतय्यन की गई थी, उसमें रुकू नहीं था। तो ये रुकू उम्मत मुहम्मदिया की खासियत है। तो एक जुज से उसके पूरे कुल को मुराद लेना, ये कुरान की इस्तलाहत में बहुत होता है। कभी सजदा करो सजदा करने वालों के साथ बोलकर मुराद लिया जाता है, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ने वालों के साथ। तो कभी सजदे से पूरी रकात मुराद होती, कभी सजदे से पूरी नमाज मुराद होती, कभी रुकू से पूरी नमाज मुराद होती, ऐसे यहाँ पर हुक्म दिया गया। यहाँ पर एक मसला निकलता है रुकू करने वालों के साथ रुकू करो से, कि इसका इसका इस हुक्म का ताल्लुक असल में किससे है। उलमा ने फरमाया इस हुक्म का ताल्लुक असल में है जमात से, और चूंकि हुक्म अमर के साथ में आया, यहाँ पर अरबी जानने वाले जानते हैं, और उससे फिर मसले की नौइयत और हैसियत पे फर्क पड़ता है, इसलिए बाज़ उलमा ने लिखा है कि जमात वाजिब है। और बाज़ अहादीस के अल्फाज, ज़ाहिरी अल्फाज इस मौक़िफ़ और इस मसलक की तायद करते हैं। उसमें यह कि ला सलात लिजार अल-मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, के मस्जिद के पड़ोसी की नमाज मस्जिद के अलावा नहीं होती है, तो मतलब वो ज़रूरी चीज़ है, उसके बगैर नहीं होती है, ये मतलब। इसलिए बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि जमात इतनी अहम है जितना एक वाजिब होता है। तो गोया जमात वाजिब है, और जमात का छोड़ने वाला वाजिब का छोड़ने वाला है, और उसका छोड़ने वाला गुनाहगार है। ये ये बाज का मौकफ है, लेकिन ये जो बाज का मौकफ सुनाया गया ये मुत्तबेह नहीं है और ये अहनाफ के नज़दीक मुहक्कक कौल नहीं है, लेकिन इससे अहमियत का अंदाज़ा होता है कि अल्फाज कुरान इसकी तायद बज़ाहिर इसकी तायद करते हैं। मुहक्कक कौल इस बारे में जो है वो ये है कि जमात नमाज़ों की वो सुन्नत मुअक्कदा है और करीब बवाजिब है। जैसे सुन्नतें तो बहुत होती हैं, बाज़ ताकीद वाली भी होती हैं, लेकिन बाज़ में ताकीद और भी ज़्यादा होती है। जुहर की सुन्नत, एक सुन्नत गैर मुअक्कदा है, एक मुअक्कदा है, फिर मुअक्कदा में एक ज़्यादा ताकीद वाली, जैसे फजर की दो सुन्नतें हैं, ऐसे ही ये फजर की दो सुन्नतों की तरह ज़्यादा ताकीद वाली सुन्नत मुअक्कदा है ये जमात। इसलिए मर्दों को इसका एहतमाम करना है। हालात अगर नॉर्मल हो, मामूल पर हो, तो घरों में पढ़ लेने का जो मिजाज यहाँ पर बहुत बना हुआ है, और बीवी के साथ पढ़ लिए, बच्चों के साथ पढ़ लिए, मामूली मामूली बहाने पे, जिस पे जमात छोड़, मस्जिद की जमात छोड़ने की इजाज़त नहीं होती है, घर के अंदर जमात पढ़ने का जो मिजाज है वो बड़ा ही मस्जिद के माहौल से, नेक माहौल से दूर करने वाला मिजाज है वो। हम ये समझते हैं कि हम बड़ा नेक काम कर रहे हैं घर के अंदर जमात कायम करके। घरों के अंदर दीन कायम करने, इस्लामी माहौल लाने के और तरीके शरीयत ने बताए हैं, वो फॉलो करना है। जमात को, नमाज को कैसा पढ़ना है उसका भी तो तरीका बताया गया। उसका तरीका यह है कि मर्द हजरात आना नमाज वक्त पे, और फिर जमात मस्जिद के अंदर जमात से नमाज अदा करके घर जाके दूसरे और तरीकों से दीन जिंदा करना। ये शक्ल वहां ले जाने की जरूरत नहीं है दीन जिंदा करने के वास्ते। हर चीज को उसकी अपनी जगह पे रखना जरूरी है, वरना फिर दीन की शक्ल मस्ख हो जाती है, बिगड़ जाती है। अब तआला इल्म सही अमल मकबूल की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहमदिही, सुभान अल्लाह व बिहमदिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।